Om Shanti. Good morning, सभी को बहुत विशेष गुड मॉर्निंग ओम शांति. रोज हम सुबह को बाबा की मुरली सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं, भागते भागते आते हैं, तो कई तरह के विचार हो सकते हैं, राइट? क्यों आज बाबा हमें क्या सुनाएंगे? आज के स्मृति से बाबा हमको या तो ज्ञान से सजाएंगे, श्रृंगार करेंगे, या तो ज्ञान से हमारे स्नान करेंगे, क्लीन करेंगे, राइट? कभी कभी दवाई की भी जरूरत होती है तो दवाई भी दे लें, दवा के रूप में भी आ जाता है. आज बाबा कहते हैं ये जो तुम ज्ञान सुनते हो, पढ़ाई पढ़ते हो, ये है तुम्हारा सबसे शक्तिशाली खुराक बुद्धि के लिए. तो आज उस रूप में बाबा की मुरली सुनेंगे जैसे कि बाबा हमें ये खुराक खिला रहे हैं, बुद्धि को बहुत तेज, शक्तिशाली, प्योर बनाने के लिए, जो कहीं और भी नहीं मिलता है हमको ऐसी बातें सुनने को. तो आज सुनते हैं बाबा की मुरली 21 फरवरी की. मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपनी सोई हुई तकदीर जगाने. तकदीर जगाना माना विश्व का मालिक बनना. अभी जस्ट इमेजिन करो कि ये जो बाबा सुनाते हैं, तकदीर जगाना माना विश्व का मालिक बनना, इस बात को ग्रहण करने के लिए, जीर्ण करने के लिए कितनी तेज होनी चाहिए बुद्धि, राइट? तो तुम बाप के पास आए हो अपनी सोई हुई तकदीर जगाने. और तकदीर जगना माना विश्व का मालिक बनना. प्रश्न है, कौन सी खुराक तुम बच्चों को पाप समान बुद्धिवान बना देती है? उत्तर है, ये पढ़ाई है तुम बच्चों के बुद्धि की खुराक. जो रोज पढ़ाई पढ़ते हैं, अर्थात इस खुराक को लेते हैं, उनकी बुद्धि पारस बन जाती है. पारसनाथ बाप जो बुद्धिवानों की बुद्धि है, वो तुम्हें आप समान पारस बुद्धि बनाते हैं. फिर गीत बजा, तकदीर जगाकर आई हूं. ओम शांति. गीत की लाइन सुनकर बाबा कहते हैं, गीत की लाइन सुनकर के भी मीठे मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए. भले गीत नहीं सुनी लेकिन गीत की लाइन सुनी. कौन सी गीत थी? तकदीर जगाकर आई हूं. तो सुनकर भी मीठे मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए. है तो कॉमन गीत, परंतु इनका सार और कोई नहीं जानते. बापी आकर गीत शास्त्र आदि का अर्थ समझाते हैं। कभी गीत के बारे में, गीतों के द्वारा, और कभी शास्त्र का उदाहरण दे करके या कोई भी कथा कीर्तन का उदाहरण दे करके बाबा हमको समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे ये भी जानते हैं कि कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है और सत्युग में सबकी तकदीर जगी हुई है। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और श्रीमत देने वाला अथवा तदबीर बनाने वाला एक ही बाप है। तकदीर भी कहां से बनी है? हमारे ही कर्म से, हमारे ही पुरुषार्थ से, तदबीर से। तो उसको फिर से जगाने के लिए बाबा को क्या करना पड़ा? आना पड़ा, ज्ञान देना पड़ा, श्रीमत देना पड़ा। तो इसलिए बाबा कहते हैं सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और श्रीमत देने वाला अथवा तदबीर बनाने वाला एक ही बाप है, और वही बैठ बच्चों की तकदीर जगाते हैं। जैसे बच्चे पैदा होते हैं और तकदीर जग जाती है, हर एक की जन्म पत्री भी निकालते हैं ना, जिस घड़ी जन्मा बच्चा उसका क्या तकदीर होगा, सारी उम्र की कभी कभी बता देते हैं इसका क्या तकदीर होगा। तो जैसे ये बच्चा जन्मता है, बाबा कहते हैं बच्चे की तकदीर जग जाती है। बच्चा जन्मा और उनको ये पता पड़ जाता है कि हम वारिस हूं, हूबहू ये फिर है बेहद की बात। यहां भी हम बाबा के पास पहुंचे, पहचाना और क्या हुआ, तकदीर जग गई, बेहद की बात है। बच्चे जानते हैं कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती है और फिर सो जाती है। अभी जगी है, जगी रहेगी काफी टाइम तक, लेकिन फिर से सो जाएगी। पावन बनते हैं तो तकदीर जगती है। तकदीर जगने का अर्थ बाबा बताते हैं क्या, पावन बनते हैं तो फिर तकदीर जगती है। पावन गृहस्थ आश्रम कहा जाता है, उसमें भी पावन गृहस्थ आश्रम। आश्रम अक्षर पवित्र होता है, पवित्र गृहस्थ आश्रम, और उनके अगेंस्ट फिर है अपवित्र पतित गृहस्थ धर्म। बाबा कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं, पवित्र गृहस्थ आश्रम और उनके अगेंस्ट फिर है अपवित्र पतित गृहस्थ धर्म। उनके धर्म ही है पतित पन्ना, उसको फिर आश्रम नहीं कहेंगे, क्योंकि आश्रम नहीं कहेंगे, गृहस्थ धर्म तो सबका है ही, जानवरों में भी है। बच्चे तो सब पैदा करते ही हैं, जानवरों को भी कहेंगे गृहस्थ धर्म में है। अब बच्चे जानते हैं हम स्वर्ग में पवित्र गृहस्थ आश्रम में थे, देवी देवता थे, उनकी महिमा भी गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, और तुम खुद भी गाते थे। अब समझते हो हम मनुष्य से देवता फिर से बन रहे हैं, पहले सिर्फ उन्हों को, मूर्तियों को देख करके गाते थे देवी देवताओं के, और अभी तुम फिर समझते हो कि हम मनुष्य से फिर वो देवता बन रहे हैं। गायन भी है मनुष्य से देवता किए, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं, ब्रह्मा देवताएं नमः, और फिर कहते हैं शिव परमात्माएं नमः। अभी उनका अर्थ भी तुम जानते हो, ब्रह्मा को देवता, शिव को परमात्मा क्यों कहते हैं वो भी जानते हो। वो तो सिर्फ अंधश्रद्धा से कह देते हैं। अब शंकर देवताएं नमः कहेंगे और शिव के लिए कहेंगे शिव परमात्माएं नमः, तो फर्क हुआ ना। शिव और शंकर का फर्क बताते हैं बाबा, वो देवता हो गया, वो परमात्मा हो गया। शिव और शंकर को एक नहीं कह सकते। तुम जानते हो हम बड़ों पर पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बन रहे हैं। पहले बिगर समझ कहते थे, गाते थे, समझते नहीं थे, सोचते नहीं थे, और अभी फिर बाबा ने बुद्धि का ताला खोला है तो पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हैं। देवताओं को तो पत्थर बुद्धि नहीं कहेंगे। फिर ड्रामा अनुसार रावण राज्य में सीढ़ी उतरनी है। जब देवता थे तो बिल्कुल पारस बुद्धि थे, भले पता भी नहीं था कि वो खुद देवता है और ये सब होगा, लेकिन फिर होगा यही ड्रामा रिपीट। फिर ड्रामा अनुसार रावण राज्य में सीढ़ी उतरनी है, पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनना है। सबसे बुद्धिमान तो एक ही बाप है जो कभी उधरते नहीं, बुद्धिमान के बुद्धिमान ही ठहरते हैं। तो बाबा कहते हैं सबसे बुद्धिमान तो एक ही बाप है। अभी तुम्हारी बुद्धि में दम नहीं रहा है, पहले कितने कुछ क्रिएट करेंगे, बुद्धि को यूज करेंगे अलग अलग रीति से, लेकिन फिर भी बाबा के हिसाब से बाबा कहते हैं उसमें कुछ दम नहीं है। ओरिजिनल क्या था, फिर क्या बना, सच्ची सच्ची बातों को जानने के लिए दम नहीं रहा है। बाप उनको बैठ पारस बुद्धि बनाते हैं। तुम यहां आते हो पारस बुद्धि बनने, आए हैं ना सभी अपने बुद्धि को पलटाने के लिए, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनने के लिए आए हो। तुम यहां आते हो पारस बुद्धि बनने। पारसनाथ के भी मंदिर हैं, वहां मेले लगते हैं, परंतु ये किसको पता नहीं कि पारसनाथ कौन है। उनकी कहानियां भी सुनेंगे, मूर्ति भी देखेंगे, लेकिन सचमुच किसके आधार से, किसकी आइडेंटिटी है पारसनाथ कौन है। वास्तव में पारस बनाने वाला तो बाप ही है, वो है बुद्धिमानों की बुद्धि। ये ज्ञान है तुम बच्चों की बुद्धि के लिए खुराक। इससे बुद्धि कितना पलटती है। बुद्धिमानों की बुद्धि क्या हमको खिलाते रोज, खुराक, सबसे श्रेष्ठ खुराक बुद्धि को पलटने के लिए। वैसे भी आप देखेंगे तो लौकिक में भी जो बच्चों की पालना करते हैं माँ बाप, जो सुबह का खाना होता है जिसको ब्रेकफास्ट कहते हैं, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं स्कूल में जाने से पहले। बच्चे कहेंगे हमको ये खाना है, और वो कहेंगे नहीं तुमको शुद्ध खाना है, तुमको अच्छा खाना है, श्रेष्ठ खाना है। तो बाबा भी हमको सुबह सुबह ये खाना खिलाते हैं, खुराक खिलाते हैं, राइट। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान है तुम बच्चों की बुद्धि के लिए खुराक, इससे बुद्धि कितनी पलटती है। ये दुनिया है कांटों का जंगल, कितने एक दो को दुख देते हैं। बुद्धि क्यों, बाबा कहते हैं दम नहीं है, क्योंकि एक दो को दुख देते हैं। सबसे पहले तो अपने आप को दुखी करते हैं, दुख ले लेते हैं, फिर वो दुख दूसरे को भी देते हैं। अभी है ही तम प्रदान रौरव नरक। गरुड़ पुराण में तो बहुत रोचक बातें लिख दी है, कैसे दुख पहुंचता है, कैसे कर्म करने से कैसे दुख पहुंचता है, सब बताएंगे, लेकिन उस बुद्धि को पलटाना कैसे वो नहीं बताएंगे। अभी तुम बच्चों को बुद्धि को खुराक मिल रही है, बेहद का बाप खुराक दे रहे हैं, ये है पढ़ाई। इसको फिर ज्ञान अमृत भी कह देते हैं, थोड़ा सा ही अमृत पिला दो एकदम क्या से क्या बन जाते हैं, एकदम ठीक हो जाते हैं, राइट। कोई जल आदि है नहीं, आजकल सब चीजों को अमृत कह देते हैं, गंगा जल को भी अमृत कहते हैं, छोटी छोटी बॉटल्स में अमृत को वो करके कुछ ना कुछ दवाई भर कर भी देते हैं, राइट। गंगा जल को भी अमृत कहते हैं, देवताओं के पैर धोकर पानी रखते हैं उसको भी अमृत कह देते हैं। अब ये भी बुद्धि से समझने की बात है ना, ये अंचली अमृत है, पपतित पावनी गंगा का जल अमृत है, जहां तहां से जो कुछ अमृत कहते हैं वो अमृत है सच्चा सच्चा, या पतित पावनी जिसको गंगा कहते हैं उसका जल अमृत है। अंचली जो देते हैं वो ऐसे नहीं कहते कि ये पतितों को पावन बनाने वाला है, गंगा जल के लिए कहते हैं पतित पावनी है, कहते भी हैं मनुष्य मरे तो गंगा जल मुख में हो, और दिखाते हैं अर्जुन ने बाण मारा फिर अमृत जल पिलाया। अब तुम बच्चों ने कोई बाण आदि नहीं चलाए हैं, एक गांव है जहां बाणों से लड़ते हैं, वहां के राजा को ईश्वर का अवतार कहते हैं। बाबा को सब कुछ मालूम था, राइट, कहां कहां गए थे, क्या क्या देखा था, क्या क्या पढ़ा था, राइट, सभी बातें बाबा हमको दोहराते हैं फिर से। ब्रह्मा बाबा वहां के राजा को ईश्वर का अवतार कहते हैं। अब ईश्वर का अवतार तो कोई हो नहीं सकता, वास्तव में सच्चा सच्चा सद्गुरु तो एक ही है जो सर्व का सद्गति दाता है, जो सभी आत्माओं को साथ ले जाते हैं। बाप के सिवाय वापस कोई भी ले जा नहीं सकता, और ब्रह्म में लीन हो जाने की भी बात नहीं है, ये नाटक बना हुआ है, और सृष्टि का चक्र अनादि फिरता ही रहता है। बाबा रहस्य बताते हैं, बाबा कहते हैं अगर वापस जाना हो तो एक ही है जो वापस ले जा सकता है, और जाकर के फिर ब्रह्म में लीन होने की भी बात नहीं है, बाकी ये नाटक बना हुआ है, सृष्टि का चक्र अनादि फिरता ही रहता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है ये अभी तुम जानते हो और कोई नहीं जानता। मनुष्य अर्थात आत्माएं अपने बाप रचयिता को भी नहीं जानती है, जिसको याद भी करती है ओ गॉडफादर, हद के बाप को कभी गॉडफादर तो नहीं कहेंगे, कोई ना कोई रूप से गॉडफादर को याद करते हैं। वो किसके लिए कह रहे हैं गॉडफादर, हद के बाप को तो नहीं कहते, गॉडफादर अक्षर बहुत रिस्पेक्ट से कहते हैं, जो भी कोई यूज करता है सिर्फ गॉड नहीं लेकिन गॉडफादर बहुत रिस्पेक्ट से करते हैं, और उनके लिए ही गाते हैं पतित पावन दुख हरता सुख करता है। एक तरफ कहते हैं वो दुख हरता सुख करता है, और जब कोई दुख होता है वह बच्चा आदि मर जाता है तो कह देते, क्या कहते फिर, ईश्वर ही दुख सुख देता है, ईश्वर ने दिया ईश्वर ने ले लिया, दुख दिया तो स्वीकार करो, इस रूप से उसको अपने आप को मनाते हैं। तो बाबा कहते ईश्वर ने हमारा बच्चा ले लिया, ये क्या किया। अब महिमा एक गाते हैं और फिर कुछ होता है तो ईश्वर को गालियां देते हैं, एक कहते हैं कि सर्व का सद्गति दाता सुख देने वाला दुख हरता है, और फिर कहते हैं कि हमारा बच्चा ले लिया, हमको दुख दे दिया, तो ये क्या हुआ, बुद्धि कहाँ गई उस पर? बाबा कहते वही तो बुद्धि है ना, इसलिए बाबा उसको बुद्धि की क्वालिटी देखो कहते हैं। कहते भी हैं ईश्वर ने बच्चा दिया है, फिर अगर उसने वापस ले लिया तो तुम रोते क्यों हो? ईश्वर के पास गया ना। सत्युग में कभी कोई रोते नहीं। बाबा आकर जब हम हमारी बुद्धि को पलटा देते हैं तो सत्युग में कैसी हमारी बुद्धि होती है, कभी कोई रोते नहीं, कोई गया भी आया भी कुछ भी नहीं असर होता, सत्युग में कभी कोई रोते नहीं। बाप समझाते हैं रोने की तो कोई दरकार नहीं, क्यों बाबा कहते हैं रोने की तो कोई दरकार ही नहीं, आत्मा को अपने हिसाब किताब अनुसार जाए दूसरा पार्ट बजाना है। कारण बताओ दुख होने का? ड्रामा चल रहा है, अपने आप चल रहा है, किसी को कुछ पार्ट, किसी को कुछ पार्ट, किसी को आने का पार्ट, किसी को जाने का पार्ट बजा रहे हैं, तो उसमें कारण क्या हुआ दुख होने का? आत्मा को अपने हिसाब किताब अनुसार जाए दूसरा पार्ट बजाना है। अब ज्ञान न होने कारण मनुष्य कितना रोते हैं, जैसे पागल हो जाते हैं। यहां तो बाप समझाते हैं अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, और सचमुच भी हुआ है यज्ञ में कई बार, नष्ट मोहा होना है अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, मना कि कोई भी बहुत नजदीक वाला हो वो भी मरे तो भी क्या करो, दुख नहीं उठाओ। लेकिन बाबा ऐसे तो नहीं कहेंगे खुशी मनाओ, लेकिन उनके लिए भोग लगाओ, राइट। उनके प्रति अगर सोचना भी हो तो क्या सोचेंगे, ईश्वर के पास गया है तो उसको आगे के लिए हम अच्छे वाइब्रेशंस दे। तो हलवा खाना माना कि नष्ट मोहा होना है। हमारा तो एक ही बेहद का बाप है, दूसरा न कोई। ऐसी अवस्था बच्चों की होनी चाहिए, एक ही बाप दूसरा न कोई। उसमें एक हिस्सा जो है एक ही बाप हो तो याद कर लेते हैं, और होता भी है कई बार, लेकिन दूसरा न कोई उसमें थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, राइट। एक के साथ और भी आ जाते हैं, फलाने को कुछ हुआ, फलाने को बीमार है, कलाने कुछ दुख भोग रहा है, तो उसकी याद भी आ जाती है, थोड़ा थोड़ा उसका भी दुख उठा लेते हैं। तो बाबा कहते हैं नहीं, बिल्कुल नष्ट मोहा होना है, हमारा तो एक ही बेहद का बाप है और दूसरा न कोई। ऐसी अवस्था बच्चों की होनी चाहिए। मोहजीत राजा की कथा भी सुनी है ना, एक ही राजा नहीं था लेकिन रानी भी, उसके पुत्र भी, सभी के सभी मोहजीत बन गए थे। किसी को कुछ दुख नहीं लगा जब एक भी कुछ घर का चला गया तो मोहजीत राजा की कथा भी सुनी है ना। ये सब है दंत कथाएं, क्योंकि मोह दो तरफ से होती है, राइट। एक होता है हम कहेंगे कि हमको मोह नहीं है, लेकिन अगर दूसरे को मैं मेरे प्रति मोह है तो वो भी तो मोह का हिस्सा हो गया, हमने उसको हेल्प नहीं किया मोहजीत बनने के लिए। इसलिए वो कहानी भी बनाई है कि कोई को भी मोह नहीं एक दूसरे के प्रति। तो ऐसी अवस्था बच्चों की होनी चाहिए। मोहजीत राजा की कथा भी सुनी है ना, लेकिन ये सब है बाबा कहते दंत कथाएं। सत्युग में कभी दुख की बात नहीं होती, वहां पर कोई पुरुषार्थ करके मोहजीत नहीं बनता है, लेकिन दुख की बातें ही नहीं होती ऐसे। न कभी अकाले मृत्यु होती है, दुख के कारण भी नहीं बनते और दुखी होने वाले भी नहीं होते, राइट। दोनों हिस्से दोनों तरफ से एकदम फ्री हो गए दुख से। तुम बच्चे जानते हैं हम अभी काल पर जीत पाते हैं, न सिर्फ मोह जीत बनते हैं लेकिन काल पर भी जीत पाते हैं। बाप को महाकाल भी कहते हैं, कालों का काल तुमको काल पर जीत बनाते हैं। अर्थात काल कभी खाता नहीं। मोह के ऊपर भी और काल के ऊपर भी, इसके ऊपर हमको विचार करना पड़ेगा, राइट, कि काल के ऊपर बाबा कैसे हमको जीत पहनाते हैं। बाबा को कहते हैं महाकाल, कालों का काल, तो तुमको काल पर भी जीत पहनाते हैं, अर्थात काल कभी वहां खाता नहीं। काल आत्मा को तो नहीं खा सकता, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, उसको कहते हैं काल खा गया। काल का इतना बड़ा रूप क्यों दे दिया? क्योंकि ज्ञान नहीं है, इसलिए कोई काल जैसे बैठा है खाने के लिए सभी को। लेकिन वास्तव में क्या होता है, बाबा कहते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, उसका नियम है छोड़ करके दूसरा लेना, उसके लिए फिर कहते हैं काल खा गया। बाकी काल कोई चीज नहीं है, चीज ही नहीं है। इसलिए तो उसको एकदम इल्यूजन कहते हैं ना, काल जैसी कोई चीज नहीं है। मनुष्य महिमा गाते रहते, समझते कुछ भी नहीं, गाते हैं अचतम केशवम, अर्थ कुछ नहीं समझते, बिल्कुल ही मनुष्य समझ से बाहर हो गए हैं, समझ से बाहर हो गए हैं। जो मनुष्य होकर के सब बातों को समझना चाहिए, उस समझ से बाहर हो गए हैं। इसलिए तो कई बच्चे, मेरे को याद है कि छोटे छोटे बच्चे कई तरह के प्रश्न पूछेंगे, लेकिन बड़ों के पास उनका उत्तर ही नहीं होगा तो कहेंगे चुप, ऐसे नहीं पूछा जाता है, चुप पूछना नहीं चाहिए, राइट, उसको बंद कर देते हैं। लेकिन वास्तव में ये सब नेचुरल क्वेश्चंस होते हैं ना, क्यों मरा, कहाँ गया, कैसे हुआ, ये सब बच्चों का ख्याल चलता है, राइट। लेकिन अभी बाबा कहते हैं समय अनुसार बिल्कुल ही मनुष्य समझ से बाहर हो गए हैं। बाप समझाते हैं ये पांच विकार तुम्हारी बुद्धि को कितना खराब कर देते हैं। किसको कहें गलती के, किसकी है, पांच विकार की। बाबा कहते हैं ये पांच विकार तुम्हारी बुद्धि को कितना खराब कर देते हैं। तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है, लेकिन पांच विकारों की गलती है। कितने मनुष्य बद्रीनाथ आदि पर जाते हैं, आज 2 लाख गए, 4 लाख गए, बड़े बड़े ऑफिसर्स भी जाते हैं तीर्थ करने, तुम तो जाते नहीं, तो वो फिर कहेंगे ये बीके तो नास्तिक है, किसी को मानते नहीं है, नास्तिक है, क्योंकि भक्ति नहीं करते। तुम फिर कहते हो जो भगवान को नहीं जानते वो नास्तिक है, बाप को तो कोई नहीं जानते, इसलिए इनको ऑर्फन की दुनिया कहा जाता है। नास्तिक का भी मतलब क्या, जो भगवान को नहीं जानते, सिर्फ मानने की बात नहीं लेकिन जानने की बात है। कितना आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, ये सारी दुनिया बाबा का घर है ना, बाप सारी दुनिया के बच्चों को पतित से पावन बनाने आते हैं, सारी दुनिया बाबा का घर है और सभी बाबा के बच्चे और सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने बाबा आते हैं। आधा कल्प बरोबर पावन दुनिया थी ना, गाते भी हैं राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है, सभी के सभी राम जैसे उनके कैरेक्टर होगी, गुण होंगे, इसके लिए कहते हैं राम राजा राम प्रजा राम साहूकार। वहां फिर अधर्म की बात कैसे हो सकती है, कहते भी हैं वहां शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, राम राज्य में शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, ये भी गायन है। फिर वहां रावण आदि कहां से आए, ये भी तो बुद्धि से समझने की बात है, शेर और बकरी अगर दूध साथ में बैठ करके पानी पी सकते हैं, जल पी सकते हैं, तो फिर रावण फिर कहां से आया उसी राम राज्य में, समझते नहीं। बाहर वाले तो ऐसी बातें सुनकर हंसते हैं, दूसरे धर्म वाले जिनके लिए ये बहुत फॉरेन लगता है, हम लोग तो देखो यू नो बचपन से सुनते आए फिर बुद्धि एकदम छट हो गई जाती है ना, सुनते सुनते फिर सोचते भी नहीं है, लेकिन बाहर वाले आते हैं फ्रेश सुनते हैं तो उनकी बुद्धि चलती है, कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, इसका कारण बताओ। तो फिर बाबा कहते हैं बाहर वाले माना कि फॉरिनर्स आकर के ऐसी बातें सुनकर हंसते हैं, मानते नहीं है कि ऐसे भी कोई अच्छा धर्म हो सकता है। तुम बच्चे जानते हो अभी ज्ञान का सागर बाप आकर हमें ज्ञान देते हैं। कथा नहीं सुनाते हैं, स्टोरीज नहीं सुनाते हैं, लेकिन क्या करते हैं, ज्ञान देते हैं। ये पतित दुनिया है ना, अब प्रेरणा से पतितों को पावन बनाएंगे क्या? प्रेरणा से करेंगे, कथा सुनाने से करेंगे, गंगा जल से करेंगे, क्या करेंगे? अब प्रेरणा से पतितों को पावन बनाएंगे क्या? बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, तो आकर हमको पावन बनाओ, तो जरूर भारत में ही आया था। अब भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर आया हूँ, जिनको बुलाया था वही मैं आया हूँ, लेकिन किस रूप में आया हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा में ही सारा ज्ञान है, और वो ही बाप बैठ बच्चों को ये सब बातें समझाते हैं, और ये समझ हमको भी मिल रही है इस पढ़ाई द्वारा। वो ही शिव बाबा में सारा ज्ञान है, और वो ही बाप बैठ बच्चों को ये सब बातें समझाते हैं। शास्त्रों में सब है दंत कथाएं, किसी की बातें, किसी की सुनी हुई बातें, फिर उसको धीरे धीरे करके उसका रूप रंग भी बदलता जाता है। नाम रख दिया है व्यास भगवान ने, शास्त्र बनाए। अब वो व्यास था भक्ति मार्ग का, और ये है व्यास देव, और उनके बच्चे तुम कौन हो, सुखदेव हो। व्यास के बच्चा भी सुखदेव था ना, तो बाबा कहते हैं एक ही देव सच्चा व्यास है, वो है बाबा, और उनके तुम बच्चे सुखदेव हो। अब तुम सुख के देवता बनते हो, बहुत अच्छा टाइटल मिल गया, सुखदेव तुम हो, सुख के देवता बनते हो। सुख का वर्षा ले रहे हो व्यास से, शिवाचार्य से। हमारा बाबा शिव बाबा आज क्या है, व्यास हो गया, और हम बच्चे सुखदेव हो गए। सुख का वर्षा ले रहे हैं व्यास से, शिवाचार्य से। व्यास के बच्चे तुम हो, परंतु मनुष्य मूंज न जाए इसलिए कहा जाता है शिव के बच्चे हो। उनका असल नाम है ही शिव। तो अब बाप कहते हैं किसी देवदारे को मत देखो, जबकि शिव बाबा सम्मुख बैठे हैं। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। ज्ञान की जरूरत क्यों है, क्योंकि आत्मा को जाना जाता है, देखा नहीं जाता है। परमात्मा को भी जाना जाता है, वो परम पिता परमात्मा शिव, वो ही आकर पतित से पावन बनने का रास्ता बताते हैं, और कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूं। आत्मा को रियलाइज किया जाता है, देखा नहीं जाता है। बाप पूछते हैं अब तुमने अपनी आत्मा को रियलाइज किया, ज्ञान तो मैंने दिया तुमको, तुम आत्मा हो, उसके बाद तुमको खुद को रियलाइज करना होता है, तो तुम अपनी आत्मा को रियलाइज तुमने किया? इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट नुंदा हुआ है, जैसे कि एक रिकॉर्ड है। तुम जानते हो हम आत्मा ही शरीर धारण करती है, पहले तुम देह अभिमानी थे, अब देही अभिमानी हो। तुम जानते हो हम आत्मा 84 जन्म लेती है, उनका एंड माना कि अंत नहीं होता। कोई कोई पूछते हैं ये ड्रामा कब से शुरू हुआ, परंतु बाबा कहते ये तो अनादि है, कभी विनाश नहीं होता। इन लोगों को कहा जाता है बना बनाया अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा, तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। जो बाबा में ज्ञान है उसको आप कितना सरल करके हमारे सामने रखते हैं, समझाते हैं, और फिर बाबा कहते हैं इसको तुमको अभी रियलाइज करना है बैठ के। जैसे अनपढ़ बच्चों को पढ़ाई दी जाती है ना, आत्मा ही शरीर में रहती है, ये है पत्थर बुद्धि के लिए फूड, भोजन। जो पत्थर बुद्धि है सिर्फ देखने से समझती है, किसको कुछ न कुछ एविडेंस चाहिए। आज किसी भी आप फील्ड में जाओ, कहते हैं इसका एविडेंस क्या है, प्रूफ क्या है, बताओ हमको, रिसर्च बताओ, ये बताओ, वो बताओ। लेकिन बाबा तो कहते हैं ये तो ज्ञान है, और ज्ञान के लिए क्या कहेंगे, फूड है। बुद्धि को समझने के लिए बाबा हमको भोजन देते हैं, फूड देते हैं। ये है पत्थर बुद्धि के लिए फूड, भोजन। बुद्धि को समझ मिलती है, बुद्धि को अपने आप को जगाना होता है, समझना होता है। तुम बच्चों के लिए बाबा ने चित्र बनवाए हैं, चलो बहुत करके तुमको बाबा कैसे समझाएंगे, चित्र के द्वारा समझाएंगे, बहुत सहज है। ये है त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब ब्रह्मा को भी त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं, देव देव महादेव, एक दो के ऊपर रखते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। एक्चुअली महादेव शिव को कहेंगे, लेकिन शंकर के लिए भी कह देंगे, एक दो के ऊपर रखते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। अब ब्रह्मा देवता कैसे हो सकता, प्रजापिता ब्रह्मा तो यहां होना चाहिए। तो ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप कहते हैं मैं इस शरीर में प्रवेश कर इन द्वारा तुमको समझाता हूं, शास्त्रों की बात नहीं सुनाता हूं, लेकिन मेरे में जो ज्ञान है इस शरीर में प्रवेश कर इन द्वारा तुमको समझाता हूं, माना इस तरह से तुमको बताता हूं कि तुम धीरे धीरे समझ सको, रियलाइज कर सको, फील कर सको। इनको अपना बनाता हूं, इनके द्वारा समझाने से भी पहले इनको पहले मैं अपना बनाता हूं, इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूं। ये भी पांच विकारों का संन्यास करते हैं। अपना क्यों बनाते हैं शिव बाबा ब्रह्मा को, पहले 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 तो ये फॉलो करे शिव बाबा की बातों को। तो ये भी पांच विकारों का संन्यास करते हैं। संन्यास करने वाले को योगी ऋषि कहा जाता है। अभी तुम राज ऋषि बने हो, बाहर रूपी से हमको कोई ऐसे नहीं कहेंगे हमने कोई ऐसा त्याग किया है। कई लोग तो हमारे में से घर में रहने वाले हैं, सब कुछ करते हुए भी राजयोगी जीवन जी रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं अभी तुम हो राज ऋषि बने हो, पांच विकारों का संन्यास तुमने किया है, तो नाम बदलता है, तुम तो राजयोगी बनते हो। तुम प्रतिज्ञा करते हो, वो सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ चले जाते हैं, यहां तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। मूल बात है ही विकार की। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा रचयिता है, और वो नई रचना रचते हैं। बाबा ने आप करके हमको इतना सारा ज्ञान क्यों दिया, बाबा कहते हैं क्योंकि बाबा को अभी नई रचना रचनी है। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा रचयिता है, और वो नई रचना रचते हैं, वो बीज रूप सत्य चित्त आनंद का सागर, ज्ञान का सागर है। स्थापना विनाश पालना कैसे करते हैं ये बाप जानते हैं। पतित पावन के रूप में आकर के बाबा ने समझाया, रचयिता के रूप में भी बाबा समझा रहे हैं। कि कैसे रचना रची जाती है। तो बाबा कहते हैं स्थापना विनाश पालना कैसे करते हैं ये भी बाप जानते हैं, मनुष्य नहीं जानते। फट से कह देते तुम देखे तो दुनिया का विनाश करेंगे, अभी भी कहते हैं दुनिया का विनाश करेंगे। विनाश की जब भी बातें होती है तो डेट भी पूछते हैं हमारे से, तुम्हारा बाबा अभी क्या कहता है, कब विनाश होगा, क्या होगा। तो विनाश का हमारा को स्टैंप मिला हुआ है, राइट। अच्छा बाबा कहते हैं तुम्हारे मुख में गुलाब हो। विनाश होना तो अच्छा है, क्योंकि इसकी विनाश हो रही है और नरक की विनाश हो रही है तो अच्छी बात है ना। वो तो तुम्हारे मुख में गुलाब हो कहते हैं, ये तो विनाश के लिए निमित्त बनी है। न शास्त्रों को न भक्ति को न गुरुओं को मानती है, सिर्फ अपने दादा को मानती है। देखने में तो वही आता है ना, ब्रह्मा बाबा दादा को मानती है। लेकिन बाप तो खुद कहते हैं ये पतित शरीर है और मैंने इनमें प्रवेश किया है, इनको मानने की बात नहीं है। लेकिन ज्ञान कहाँ से आ रहा है, ज्ञान सागर शिव बाबा से। और ये तो पतित शरीर है ब्रह्मा का, मैंने इनमें प्रवेश किया है। पतित दुनिया में तो कोई पावन होता नहीं, मनुष्य तो जो सुनी सुनाई बातें सुनते हैं वो बोलते रहते हैं। ऐसी सुनी सुनाई बातों से तो भारत दुर्गति को पाया है। तब आप आकर सच सुनाए, सबकी सदगति करते हैं। जिनके पास सच्चा सच्चा ज्ञान है, कल्प के एंड में आकर के जबकि बहुत दुर्गति हो गई है, तब बाप आकर सच सुनाए, सबकी सदगति करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज की मुरली का मुख्य सार धारणा के लिए है, पहला पॉइंट कौन सा टाइटल मिला हमको आज, सुखदेव, राइट। सुखदेव माना सुख देव लेकर के दूसरों को बांटने वाले देवता, सुखदेव। बाप से सुख का वर्षा लेकर सुख का देवता बनना है। वैसे बाबा कहते हैं ज्ञान का वर्षा, लेकिन ज्ञान के साथ साथ ज्ञान से जो सुख मिलता है वो भी वर्षा हो गया। बाप से सुख का वर्षा लेकर सुख का देवता बनना है, सबको सुख देना है। ज्ञान का मतलब क्या होता है, सबको सुख बांटना, दुखों से निकालना, सबको सुख देना है। राज ऋषि बनने के लिए सर्व विकारों का संन्यास करना है। राज ऋषि बनने के लिए सर्व विकारों का संन्यास करना है। एक सुखदेव का टाइटल, रुद्रा राज ऋषि का टाइटल, सर्व विकारों का संन्यास। और दूसरा पॉइंट, पढ़ाई ही सच्ची खुराक है, सदगति के लिए सुनी सुनाई बातों को छोड़ श्रीमत पर चलना है। पढ़ाई ही सच्ची खुराक है, सदगति के लिए सुनी सुनाई बातों को छोड़ श्रीमत पर चलना है। एक बाप से ही सुनना है। मोहजीत बनना है, मोहजीत बनना है। वरदान आज का, अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। जो बच्चे ज्ञान का स्मरण कर उसका स्वरूप बनते हैं वो सदा हर्षित रहते हैं। ज्ञान का अल्टीमेट रिजल्ट क्या होना चाहिए? हर्षित मुख। सदा हर्षित रहना ये ब्राह्मण जीवन का असली संस्कार है। दिव्य गुण अपनी चीज है और अवगुण माया की चीज है, जो संग दोष से आ गए हैं। हमारे में ओरिजिनली ये नहीं थी माया की चीज, अवगुण ये सब। अब बाबा कहते हैं उसे पीठ दे दो, उसे अपना पीठ दे दो और अपने ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन पर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। ऑलमाइटी अथॉरिटी, हमको जो अब ज्ञान मिला है, दिव्य गुण मिले हैं ऑलमाइटी से, अब उसे पीठ दे दो और अपने ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन पर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। कोई भी आसुरी व व्यर्थ संस्कार सामने आने की हिम्मत भी नहीं रख सकेंगे। स्लोगन है, संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो, तो संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। मैं हूं ही संपूर्ण, मेरे में कोई कमी नहीं है, कमजोरी नहीं है, तो फिर कोई भी आकर्षण अपनी तरफ नहीं खींच सकते। तो अव्यक्त इशारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। आज के लिए पॉइंट है एकता के लिए एक रूहानी तावीज सदा अपने पास रखना। एक जैसे लकी चार्म होता है ना, तावीज सदा अपने पास रखना कि रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। ये रिगार्ड का रिकॉर्ड सफलता का अविनाशी रिकॉर्ड हो जाएगा। ये रिगार्ड का रिकॉर्ड, रिकॉर्ड माना कि आपकी जो नोट किया जाता है कि कितना आप दूसरे को रिगार्ड देते आए, इसका अगर रिकॉर्ड हो गया, आपका अच्छा रिकॉर्ड हो गया, तो ये रिगार्ड का रिकॉर्ड सफलता का अविनाशी रिकॉर्ड हो जाएगा। सफलता का अविनाशी रिकॉर्ड हो जाएगा। मुख पर एक ही सफलता का मंत्र हो, पहले आप, ये महामंत्र मन से पक्का रहे। रिकॉर्ड देने का तरीका बाबा कहते हैं पहले आप, ये महामंत्र मन से पक्का रहे। यथार्थ रूप से पहले मैं को मिटाकर दूसरे को आगे बढ़ाना, सो अपना बढ़ना समझते हुए इस महामंत्र को आगे बढ़ाते सफलता को पाते रहो। यथार्थ रूप से पहले मैं को मिटाकर दूसरे को आगे बढ़ाना, सो अपना बढ़ना समझते हुए इस महामंत्र को आगे बढ़ाते सफलता को पाते रहो। ये मंत्र और तावीज सदा साथ रहे तो तो प्रत्यक्षता का नगाड़ा बज जाएगा। सभी के सभी ये कहे, पहले आप, पहले आप, पहले आप, तो क्या हो जाए? हम तो कहेंगे कि कोई भी आप नहीं, पहले नहीं जाएगा, लेकिन बाबा कहते हैं ये तो बाबा का प्रत्यक्षता होता जाए। कोई अपने को आगे नहीं रखे, लेकिन दूसरे को आगे रखे तो बाबा खुद उसमें प्रत्यक्ष हो जाएगा, नगाड़ा बच जाएगा प्रत्यक्षता का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
कुछ विदेशियों के अनाउंसमेंट है पर योग के बाद।
अच्छा, पहले योग फिर अनाउंसमेंट्स फॉर डबल फॉरेनर्स आफ्टर योग।